ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश के साथ जीत हासिल की है, जबकि झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता बरकरार रखी है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 132 सीटें मिली है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली रंकांपा ने 41 सीटें हासिल की है। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार समूह ने 10 सीटें हासिल की हैं। शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें हासिल की हैं और अन्य ने 12 सीटें जीती हैं। झारखंड की कुल 81 सीटों में से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों पर विजयी रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने 4 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को 21, अन्य को 6 सीटों पर जीत मिली है। इंडिया ब्लॉक में झामुमो, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी शामिल है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर इस महीने की 20 तारीख को मतदान हुआ था, जबकि झारखंड में 81 सीटों के लिए इस महीने की 13 और 20 तारीख को दो चरणों में मतदान हुआ था। इस बीच झारखंड में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज रांची में इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा की 2 सीटों और 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख से अधिक मतों से जीत गई हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवार रविन्द्र चौहान वसंतराव ने नांदेड़ लोकसभा सीट जीत ली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 46 विधानसभा उपचुनाव में से 25 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में जीत विकास और सुशासन की जीत है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम नकारात्मक राजनीति की हार है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हुए उपचुनावों में भी लोगों ने भाजपा के प्रति विश्वास दिखाया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को बधाई दी। कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे का विश्लेषण करेगी। नई दिल्ली में पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने मान लिया था कि उसे राज्य में जनादेश मिलेगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वह सभा को संबोधित भी करेंगे। ओडिशा पर्व नई दिल्ली की एक संस्था ओडिशा समाज द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह संस्था इसके माध्यम से ओडिया विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुमूल्य कार्य करने में लगी हुई है। परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष ओडिशा पर्व का आयोजन 22 से 24 नवंबर तक किया जा रहा है। आयोजन में ओडिशा की समृद्ध विरासत के रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को प्रदर्शित करते हुए राज्य के जीवंत सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से इटली की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। वह G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के फ्यूगी की यात्रा करेंगे, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान उनके इटली और G7 से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अन्य देशों के अपने समकक्षों से मिलने और द्विपक्षीय चर्चा करने की भी उम्मीद है। विदेश मंत्री यात्रा के दौरान रोम में MED मेडिटेरियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।